ओम शांति। गुड इवनिंग। आज की शाम अलौकिक शाम किसके साथ तुरुहरियान करेंगे? आज हम दीदी के साथ तुरुहरियान करेंगे। आपके जो दिल के प्रश्न है, जो भी आपके दिल में कुछ कुछ बातें आई होंगी, तो आपकी बातें लेके हम यहां बैठे हैं। वैसे सभी ने लड्डू खाया? हाँ, लड्डू खाया, तभी तो एकदम चेहरा खुश नजर आ रहा है। तो आज हम हमारी दीदी के साथ, दीदी के लिए थोड़े चंद लाइनें हम कहना चाहते हैं। निर्मल चित्त, निर्मल जीवन, निर्मल जिसकी वाणी, प्रभु मिलन की आशाओं की भर्ती ऊंची भरारी, ईश्वरे प्रेम और गुणों की आप वरदानी महादानी, नयन चैन में समाये आध्यात्मिक धरोहरी, आपकी पालना में पलते हैं हम सभी बाबा के सपूत भट्टी के फरिश्ते। सब फरिश्ते हो गए? हो रहे हैं, थोड़ा बाकी है। सत्यता सादगी शक्ति आपका श्रृंगार, आपके संग संग चलता है नया संसार, आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए अमूल्य उपहार, बड़ी नजरों से सदा देखता है पूरा ईश्वरीय परिवार, देखता है ना ईश्वरीय परिवार, दिल की गहराइयों से आपका हम सभी भट्टी वाले करते हैं स्वागत बारंबार बारंबार बारंबार। तो आप सभी बहुत ही उमंग में बैठे हैं कि दीदी जी आप क्या सुनाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, दीदी जी की पहली मुलाकात या पहला जो दर्शन हुआ मेरा 1985, हम प्रकाशमणि दादी जी के साथ मधुबन निवासी अहमदाबाद गए थे और वापसी में खेड़ ब्रह्मा में एक सेंटर का फाउंडेशन स्टोन दादी जी के द्वारा रखना था। और उस समय सारी दीदियां, जैसे मोहिनी दीदी है, जयंती दीदी है, हमारी निर्मला दीदी है, तो उस समय जब फाउंडेशन स्टोन रख रहे थे तो उस समय एक थैला था और उस समय दादी जी ने सबसे पहले उसमें संयोग दिया और कहा गुड़ जाने गुड़ की गोतड़ी जाने। तो पहली बार वो मैंने शब्द सुना था और उस समय दीदी ने कहा निर्मला, ऐसे करके बोला और दीदी के तरफ इशारा किया, तब देखा कि यही हमारी दीदी है। और उस समय तो दीदी कितनी 35 साल पहले की बात है, एकदम वाइट वाइट कपड़े, वाइट पर्स, घड़ी वाइट। तो दीदी को मैंने पहली बार देखा था उस समय। तो दीदी का हम खुले दिल से आज स्वागत करते हैं और आगे की शुरुआत करते हैं। अभी अभी आप सचमुच बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि पिछले हफ्ते में दीदी ने एक बहुत बड़ी परीक्षा दी है। हॉस्पिटल में थी दीदी जी और उस समय काफी मेहनत से, काफी तैयारी से, मतलब दीदी तैयार भी हो गई और हमारे बीच में भी आ गई। और आप सचमुच भाग्यशाली, में एक दिन दीदी के पास गया, मैंने कहा हमारे भट्टी वालों से मिलेंगे, तो दीदी ने क्या बोला पता है? क्यों नहीं। तो देखो आपसे कितना प्यार है। तो ये सचमुच आप बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आपके समय दीदी ने क्लास भी किया, मुरली क्लास भी, आज भी दीदी आपके सामने हैं। तो दीदी जी के सामने पहला प्रश्न, दीदी कि हॉस्पिटल अभी अपने यात्रा की एक नई अनुभूति होगी और दीदी इतना ध्यान भी रखते तो भी इस परीक्षा से गुजरना पड़ा, तो दीदी जी आपका क्या अनुभव रहा इसके बीच में?
ओम शांति। इस बार जो हॉस्पिटल में जाना हुआ तो ये तो बहुत छोटी परीक्षा थी, क्योंकि उसके पहले हमने दो बड़ी परीक्षा पास की। 2011 में हमको गलनबरी सिंड्रोम, जो लाखों में से एक दो केसेस होते हैं, ये हुआ। और उस समय तो जैसे हमारा हाथ पांव सब चलता नहीं था, पैरालिसिस हो गया था नर्व और मसल का। तो उस समय तो बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि हमको आईसीयू में भी, थाईलैंड में बीमार हुई और उनको तो मालूम ही नहीं पड़ा कि ये बीमारी क्या है। फिर बम्बई में आकर ये बीमारी का पता लगा कि ये क्या बीमारी है। तो क्या है कि इस बारी तो 5 दिन रहना पड़ा और कोरोना नेगेटिव आ गया था, तब तक पॉजिटिव था तो हॉस्पिटल में नहीं रखा, क्योंकि हॉस्पिटल में उनको एक भी कोरोना पेशेंट नहीं रखना था। तो बाद में जब टेस्ट कराए तो कोरोना नेगेटिव आया, परंतु थोड़ा इन्फेक्शन था लंग में और थ्रोट में, तो इसलिए भर्ती किया। तो हमारी तो रूटीन चालू रही, क्योंकि जैसे 7 बजे मुरली पढ़नी है और 5 बजे के बाद शाम को हॉस्पिटल की बहनें कोई ना कोई आती रहती थी मिलने, क्योंकि 5 बजे वो लोग फ्री होते थे, आते रहते थे, कुछ ज्ञान चर्चा करते थे। बाकी दिन में तो नर्सिस की विजिट इतनी होती थी, 1-2 घंटे हर घंटे कुछ दवाई देनी है, इंजेक्शन देना है, कुछ ब्लड प्रेशर चेक करना है, तो नर्सिस की विजिट होती रही। बाकी अच्छा आराम किया, क्योंकि जब से कोरोना हुआ तब से थोड़ा ज़्यादा आराम करती थी, दिन में 3-4 घंटा आराम करती थी और रात को भी 7 घंटे आराम करती थी। तो इसलिए आराम भी किया, हमारे ईमेल भी जवाब देती रही, क्योंकि रोज के 10-15 ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज, गेट वेल सून, गेट वेल सून, सब लिखते रहे, उनको जवाब दिया। तो इससे बिजी रही, कुछ सेवा भी हो गई।
थैंक यू दीदी, आप हमारे लिए तैयार होके आए हैं। और इसमें से मम्मा को किसने देखा है, हाथ उठाओ। देखो एक ही हमारी दीदी है जिसने मम्मा को देखा भी और मम्मा से पालना भी ली है, तो दीदी जी हमें थोड़ा मम्मा के बारे में थोड़ा बताओ, आप कैसे मिले, मम्मा ने कैसे प्यार किया, कैसे आपको खड़ा किया, जो भी है मम्मा के साथ का थोड़ा अनुभव सुनाइए।
मम्मा बंबई में 9 मास रही, तो मम्मा को 2 मास हुआ होगा, और उषा रमेश जो मुंबई में थे, उषा हमारी क्लास में थी फर्स्ट ईयर इंटर में, साइंस हमने साथ में किया, तब से हमारी फ्रेंडशिप थी 1955 से। तो जब उषा को यज्ञ ब्रह्मा कुमारी का परिचय मिला, तो उसने हमको निमंत्रण दिया कि मम्मा संडे संडे भाषण करती है, आप आओ। तो पहले तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर उसने एक दिन फ्राइडे या सैटरडे फोन किया कि ये संडे क्या करती हो, तो मैं उस संडे फ्री थी, हॉस्पिटल में काम करती थी, तो संडे हमारा फ्री था। क्या है कि मैं हॉस्पिटल में भाईखला में काम करती थी, और हमारा लौकिक घर था कांदीवली में, तो जब छुट्टी होती है संडे की तो घर जाती थी, पर उस संडे जैसे हम इमरजेंसी ड्यूटी पर थे तो इसलिए गई नहीं थी, पर शाम को 2 घंटा छुट्टी थी, तो मैं मम्मा के प्रवचन में गई। और मम्मा के प्रवचन के पहले थोड़ा पहुंची थी, तो वहाँ निर्मल शांता दादी थी, वो हम जो 5-6 जल्दी गए थे उनके साथ बैठकर बात कर रही थी कि ये कैसे हम को 5 विकार छोड़ने हैं आदि आदि। फिर मम्मा का प्रवचन पूरा हुआ तो उषा ने मुझे पूछा, तुम कोर्स करेंगी? तो मैंने कहा ठीक है, तो कल से सोमवार से मैंने कोर्स शुरू किया। 7 दिन के कोर्स के बाद फिर दूसरे संडे मम्मा से मिलाया, तो मम्मा बहुत धीर गंभीर मीठी और ऑफिशियल थी, जो बात करता था उसी का ही जवाब देना जैसे। तो हमने मम्मा से पूछा, मम्मा, पहले तो कहा कि मम्मा मेरी टीचर जा रही है, क्योंकि मुझे कोर्स कराया मुझे दादी जो पटना में थी, तो कोर्स कराकर आते थे जब मम्मा होती थी, तो किसी न किसी सीनियर सिस्टर को मेरा बाबा भेजता था, जाओ मम्मा से भी मिलके आओ, रिफ्रेश होके आओ, बम्बई भी देख कर आओ। तो कुंज दादी आई थी और वो जा रही थी, मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, निर्मल शांता तुमको देखेंगे। तो फिर मैंने मुझे पूछा कि कोई सवाल है, तो मैंने कहा मम्मा जब कृष्ण था सतो प्रधान, और क्राइस्ट का भी पहला जन्म सतो प्रधान था, तो उन दोनों में क्या अंतर? तो मम्मा ने समझाया कि क्राइस्ट जन्म से सतो प्रधान नहीं था, इसलिए उसका बचपन का गायन नहीं है या पूजन नहीं है, परंतु कृष्ण है सत्युगी सतो प्रधान था, तो जन्म से पवित्र था, सतो प्रधान था, इसलिए बाल कृष्ण की पूजा होती है। फिर कुछ मास के बाद उषा के घर मम्मा रही थी, तो उषा ने मम्मा के साथ भोजन करने बुलाया था। तो भोजन के पहले एक भाई था यूपी का, कानपुर का, उससे हम बात कर रही थी। तो उसको हमने पूछा कि भाई चक्कर रिपीट कैसे होता है हर 5000 वर्ष बाद, उसका क्या प्रूफ। और शिव बाबा को तो हम मानती हूँ, पर ब्रह्मा के तन में आकर कैसे वो ज्ञान देते हैं, वो कैसे माने। फिर उसने भी समझाया और उसने अपना जीवन का बताया कि वो कुमार था, पांडव भवन में रहता था और अपनी सारी कमाई वो यज्ञ में देता था और फिर यज्ञ से उसका खर्चा होता था। तो मैंने उस समय निर्णय किया कि मेरी कमाई का मैं 90% नेशनल डिफेंस फंड में देती थी। तो मैंने कहा कि अभी मैं उसमें से 80% बाबा के यज्ञ में देंगी और 10% मैं नेशनल डिफेंस फंड में देंगी और 5% अपने पास रखेंगे। और मम्मा से पूछा कि मम्मा मेरा विचार नहीं है मेडिकल प्रैक्टिस करने का, मैं चाहती हूँ कि इसी सेवा में लग जाऊँ। तो मम्मा ने कहा नहीं, तुम जब ब्रह्मा बाबा से मिलो ना तब पूछना क्या करना है। मतलब मम्मा कोशिश करके ऐसे मुख्य डिसीजन नहीं लेती थी। बाकी मम्मा की मुरलियाँ मैं सिर्फ संडे संडे सुनने जाती थी, क्योंकि हमारा जॉब ऐसा था सिर्फ शाम को 2 घंटा छुट्टी मिलती थी और मम्मा सवेरे क्लास कराती थी। परंतु मम्मा की मुरली में से हमको 2 बात अभी याद है कि मम्मा ने कहा कि देखो किसी की बुराई को नहीं देखना है। जैसे कोई है अपनी घर की सफाई करता है, तो इंडिया में क्या करते, घर तो सफाई करते, आंगन सफाई करके गेट के बाहर कचरा फेंक देते हैं, तो बाजू वाले अपने घर में नहीं लाते हैं। इसी से हरेक अपनी बुराई फेंकना चाहते हैं, वो फेंकना चाहते हैं। आप देखेंगे उसके बारे में सोचेंगे तो आप में बुराई आ जाएंगी, इसलिए किसी की बुराई देखनी नहीं है। दूसरा मामा कहती थी कि आपको कुछ बात अच्छी नहीं लगती है तो आप क्या करते हो, जिसको विस्को सुनाते हो, अपने फ्रेंड्स को सुनाएंगे कि ये है, ये ऐसा है, ऐसा है, वो वैसा है, आदि आदि। अब आप उनका मन खराब कर देंगे। जैसे उल्टी करनी होती है, किसी को उल्टी आती है तो क्या करेंगे, बाथरूम में जाकर वॉश बेसिन में या तो फ्लश कर देंगे। वो रास्ते में भी होंगे ना तो एक साइड पर जाकर उल्टी करेंगे, नहीं तो क्या होगा, जो वहां से पसार होगा उसको अच्छा नहीं लगेगा। उस उल्टी पर मक्खी बैठेंगी, वो मक्खी किसी के खाने पर बैठेंगी तो क्या होगा, सब बीमार हो जाएंगे। इसी रीत से आपको कुछ उल्टी सिल्टी बातें करनी है तो इधर उधर नहीं करो, नहीं तो वो भी बीमार हो जाएंगे। परंतु आप सीनियर से बताओ, उससे राय लो और अपनी ट्रीटमेंट करो। जैसे उल्टी होती है तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे सीनियर सिस्टर से बात करके अपनी जो भी इधर उधर की बातें हैं वो करो।
थैंक यू दीदी। देखो दीदी जी ने कितना शॉर्ट में और सहज रूप से बताया। वैसे हमारे आदरणीय जगदीश ब्राता जी बताते थे कि हम तो ठेके भी दिए हुए मटके हैं, लेकिन इन महान आत्मा को मम्मा बाबा ने सींचा है, मम्मा बाबा ने तैयार किया है। तो बहुत भाग्यशाली दीदी हमारी की जिन्होंने मम्मा की पालना, मम्मा जैसी टीचर मिली। दीदी जी दूसरा प्रश्न है कि आप बाबा के बारे में तो आप बहुत सुना होगा वहां भी, लेकिन बाबा के समक्ष पहली बार जब आए थे तो आपको कैसे क्या अनुभव हुआ था ब्रह्मा बाबा के सामने, क्योंकि आप तो मधुबन में आए होंगे, तो वो अनुभव थोड़ा शॉर्ट में 2 मिनट में सुनाइए।
तो मैं पहली बार ब्रह्मा बाबा को मधुबन में मिली 1.25 साल के बाद, और नेचुरली तब तक हमारा निश्चय पक्का हो गया था कि ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ज्ञान देते हैं, तो इसलिए ब्रह्मा बाबा के लिए हमारा बहुत रिगार्ड था। हमारा लौकिक पिता का मैं लाडली ज्यादा थी, क्योंकि मैं पढ़ने करने में होशियार थी तो उनका विशेष प्यार था मेरे लिए। परंतु ब्रह्मा बाबा का जो अलौकिक प्यार था, तो वो अलौकिक प्यार जैसे कि ये हमारे लौकिक पिता से भी अधिक था। और ये जैसे कि हम कल्प पहले मिले थे तो नया नहीं लगा, और मैंने ब्रह्मा बाबा से पूछा फिर कि बाबा मेरा विचार नहीं है मेडिकल प्रैक्टिस करने का, बाबा की सेवा में लग जाने का। तो बाबा ने कहा नहीं, तुमको डबल डॉक्टरी करनी है, जो पढ़ाई की है उसके भी प्रैक्टिस करनी है और बाबा की सेवा भी करनी है। फिर मैंने कुछ सोचा नहीं। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा कि मेरे लौकिक पिता चाहते हैं कि मैं मुंबई में ही प्रैक्टिस करूं, और मेरा विचार है कहां गांव में जहां डॉक्टर्स नहीं है वहां प्रैक्टिस करूं। तो मैं मुंबई में कांदिवली में रहती थी, जो कि कुछ दूर ही शहर से 20 मील दूर गांव जैसा था, उस समय इतना डेवलप नहीं हुआ था। बाबा ने कहा कांदिवली भी गांवड़ा है ना, भले कांदिवली में ही सेवा करो। फिर बाबा ने कहा, मैंने मान लिया।
दीदी जी
फिर बाबा की जो परख शक्ति थी, हाँ इतनी परख शक्ति थी जो हमें अपने बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो बाबा पत्र लिखता था, सरल है, निर्मल है, मीठी है, शांत है, गंभीर है, ऐसे ऐसी बातें लिखता था। फिर बाद में हमने रियलाइज किया कि वो हमारी विशेषता है।
दीदी जी आपको 1962 में संपर्क में ज्ञान में आए, 2-4 साल में आपने निर्णय भी ले लिया, जबकि आप घर में पूरा संपन्न, आपका परिवार संपन्न था, आप अभी भी कितनी सुंदर है, उस समय भी कितनी सुंदर होगी, तो भी आपके मन में ऐसी मतलब ऐसा क्या चीज इसमें नजर आई जो आपके मन में आया कि मैं समर्पित हो जाओ, पूरा जीवन बाबा की सेवा में लग जाओ, ऐसी कौन सी चीज आपको मतलब दिखी जो आपने इतना बड़ा निर्णय लिया वो जमाने में?
मैंने मेडिकल स्टडी इसलिए ली कि मुझे समाज सेवा करना था। 17 साल की आयु में जब मैंने मैट्रिकुलेशन पास किया, SSC पास किया, तो हमारे पिताजी ने क्या किया, वो हमारी सब बहनों का 17 साल में सगाई हो गई, 19 साल में शादी हो गई। तो मैंने मैट्रिकुलेशन के बाद उन्होंने लड़का ढूंढना शुरू किया, तो मैंने शर्त रखी, या तो मैं शादी करूंगी या तो डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि शादी माना उस समय भी मेरा ख्याल था, शादी माना बंधन, शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनकी सेवा करो, फिर कहेंगे मेडिकल प्रैक्टिस क्या करनी है, और सगाई हुई फिर कहेंगे जल्दी जल्दी शादी करो, फिर शादी करके कैसे पढ़ सके, मेडिकल स्टडी कोई कम नहीं है। तो मैंने कहा कि या तो मैं शादी करूंगी या तो मैं पढ़ूंगी, तो हमारे लौकिक पिता के खुद की इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, तो इसलिए छोड़ दिया हमको, हमारी छोटी बहनों की शादी कर ली। तो समझो जब बाबा के पास आए, ज्ञान लिया, मैंने कहा चलो मेडिकल प्रैक्टिस में हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे, थोड़ा समय ठीक रहेगा, परमानेंट तो बीमारी नहीं दूर कर सकेंगे, लेकिन यदि हम किसी को ज्ञान योग सिखाएंगे तो वो तो हमेशा के लिए हेल्दी वेल्दी हैप्पी बन जाएंगे, तो क्यों नहीं वो सेवा करो। पर बाबा का विचार ये था कि लौकिक पिता को नाराज ना करूं, इतनी पढ़ाई की है तो उसका उपयोग करूं, इसलिए बाबा ने कहा नहीं दोनों करो।
वैसे आपको पता होगा कि यज्ञ में सबसे पहला जो दहेज दिया था इनके पिताजी ने दिया था, क्योंकि दीदी के नाम से तो उन्होंने प्रॉपर्टी जो भी है वो रखा था, तो उन्होंने खास सेंटर। तो दीदी जी आपका संकल्प था या पिताजी था या कैसे ये हुआ कि भाई जो मकान आपको पहले सेंटर के लिए बाबा की सेवा के लिए मिला, ये आपके अंदर कैसे संकल्प आया?
तो हमारा लौकिक पिता बिजनेसमैन था, तो उसको उन्होंने क्या किया कि बिजनेस में टैक्स बचाने के लिए सब लड़की लड़के पोते तक उन्हों को अपना पार्टनर बनाया, शेयर होल्डर। तो हर एक का सब जो जितनी वो कमाई करता था एक एक बच्चे को बाजू में रख दिया, ताकि लड़कियों की शादी में काम लगे। अभी मैं ज्ञान में आई, मुझे शादी तो नहीं करनी थी, तो उन दिनों में बंबई में सिर्फ 2 सेंटर थे, एक सायन और एक वाटरलू, बम्बई प्रॉपर में, साउथ बॉम्बे में रीगल सिनेमा के सामने। तो रमेश भाई का विचार था कि ये दोनों मकान फ्लैट में हैं, और बाबा का मकान या आश्रम होना चाहिए कोई मकान में। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जरा कांदीवली की ओर देखो, मकान की प्राइस क्या है। तो हमने सोचा कि हमारे लौकिक पिता ने बहनों को तो फ्लैट दिया शादी में, और हमारे पिताजी की जमीन थी, बंगलो था उसके पीछे जमीन थी। तो हमने सोचा कि हम लौकिक पिता से पूछे उस जमीन हमको मिलेंगी क्या। तो लौकिक पिता से पूछने के पहले मैंने ब्रह्मा बाबा से कहा कि मैं लौकिक पिता से जमीन का प्लॉट मांगू। तो बाबा ने कहा यदि तुम्हारा बाप जमीन देगा, अलौकिक बाप मकान बना देगा। तो मैंने लौकिक पिता से पूछा कि ये जमीन का प्लॉट मिल सकता है हमारे सेंटर के लिए। कहे नहीं नहीं नहीं, लड़की को इतना नजदीक नहीं रहना चाहिए, तुम दूसरे कहाँ फ्लैट ढूंढो, मैं पैसा दूंगा। तो उसने उस समय 62 में कहा कि मैं 20,000 दूंगा, और मैंने फिर 40,000 का खर्च किया क्योंकि हमको दो फ्लैट चाहिए, फर्निशिंग वगैरह सब कुछ करके 40,000 का खर्च हुआ। तो 65 में तैयार हो गया और 66 में उद्घाटन हुआ।
देखो कमाल है दीदी। और दीदी की ये विशेषता थी, डॉक्टर थी और फिर इंग्लिश आता था। दीदी एकदम सच्चे दिल से बाबा के साथ हर चीज शेयर करती थी। और फिर दादी जी के भी ये ध्यान आया, दादी दीदियों के। तो जो पहला ग्रुप विदेश गया पहला, तो दीदी भी उसमें थी। तो इस प्रकार दीदी हर जगह हाजी का पाठ करते 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 आगे बढ़ती गई। जब हम 2015 में गए थे यूके, तो वहाँ लेस्टर में गए थे, तो वहाँ एक बाबू काका मिले थे। तो उन्होंने बताया दीदी हमारे पास आई थी, मैं बिजनेस में जाता था तब तक दीदी हमारा भोजन बनाती थी, रोटी बनाती थी गरम गरम, हमें खिलाती थी, फिर हम दोनों जाके सेवा करते थे। तो दीदी आप इतने संपन्न परिवार के थे, फिर आप बाबा के समर्पित हो गए, फिर बाबा के घर से विदेश गए, तो आपको बहुत बड़ा त्याग करना पड़ा होगा। तो आपका कुछ थॉट्स नहीं चले इसमें, इतना बड़ा मतलब भाई रोटी भी बनानी है विदेश जाके, जैसे लेस्टर में गए।
क्या है कि विदेश में लोग नौकरी भी करते हैं सेवा भी करते हैं, और मैं जहां भी जा गई, नौकरी तो करनी नहीं थी, सेवा में सवेरे मुरली सुनाई, फिर कभी का कोई आया गया कोर्स कराया, परंतु इतना तो बिजी नहीं रहते हैं। तो इसलिए जहां भी मैं गई, ऑस्ट्रेलिया में भी गई, तो वहां भी भाई बहने नौकरी करते थे, तो मैं खाना पका देती थी, और उनको यदि, क्योंकि उनको आदत नहीं है दाल चावल रोटी सब्जी खाने की दोनों टाइम, तो कोई बार वो लोग भी खाना पकाते थे। बाकी लेस्टर में तो गुजराती ही थे, तो वो तो दाल चावल रोटी सब्जी खाते ही थे। तो इसलिए ये भी सेवा है ना, जैसे बाबा ने अभी अभी मुरली में बताया कि बोली दादी कभी क्लास नहीं कराती थी, भाषण नहीं कराती थी, परंतु इतनी सेवा करती थी जो सभी प्यार से उसको याद करते हैं, बाबा भी याद करते हैं।
दीदी जी, आप सभी को पता होगा मुरली में आता है निर्मल आश्रम, कौन है वो? हा? दीदी जी है। देखो, बाबा भी उस समय मुरली में दीदी को याद करते थे, क्योंकि दीदी का चलना बोलना रहना हर रॉयल्टी, और उस समय दीदी खास। तो दीदी ये पूछना चाहते हैं कि जब मुरली में आपको सब याद करते, बाबा याद करता है, सब लोग याद करते हैं, सब खुश हो जाते, तो आपके मन में उस समय क्या थॉट्स आता है?
मैं साक्षी बनकर सुनती रही और मेरे से ज्यादा नशा स्टूडेंट्स को होता था, क्योंकि वो जब भी बाबा ने हमको स्टेज पर बुलाकर माथे पर हाथ दिया तो मैं तो जैसे साधारण बात है ऐसे समझ कर चली, पर हमारे स्टूडेंट यहाँ ज्ञान सरोवर वाले भाई कहते हैं हमको तो बहुत नशा चढ़ गया कि हमारी दीदी को बाबा ने आशीर्वाद।
पता है, इतनी बड़ी सभा थी और सभा के बीच में अचानक बाबा ने दीदी को बुलाया इधर सिर पे, तो ऐसा पहली बार हुआ दीदी कि मुरली लास्ट में तो बहुत सब मिलने जाते हैं, लेकिन दीदी को बीच में उठाया और दीदी के सिर पे। तो दीदी, उस समय आप क्या तकलीफ में थी, कुछ प्रॉब्लम था, ऐसे क्यों बाबा ने आपको क्या कुछ ऐसे विशेष, या आपने कुछ थॉट्स किया था उस समय कि कुछ तो हुआ होगा, कनेक्शन तो हुआ होगा ना कुछ, तो कि इतने हजारों लोगों में से आपको ही उठाया?
वही पहले तो मैं समझ में नहीं आया कि मुझे स्टेज पर जाना है।
हाँ, वो बार बार दीदी दीदी आपको करके बोला रहते हैं।
तो मैंने मोहिनी बहन बाजू में बैठी थी, मैंने कहा क्या कहते हैं, मुझे जाना है क्या स्टेज पर? तो मोहिनी बहन कहती हाँ जाओ स्टेज पर।
दूसरी बात, जैसे दादी जी की भी बहुत पालना मिली है आपको, और दादी जी ने आपको एक टाइटल दिया था, क्या टाइटल दिया था? तुम शेरनी हो। तो ये कब मिला टाइटल आपको शेरनी का?
क्या है कि शुरू शुरू में जब मैं ऑस्ट्रेलिया थी, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड सेवा में गई, तो न्यूजीलैंड में उस समय कोई सेंटर नहीं था, कोई ब्राह्मण नहीं थे, तो मैं संपर्क वाले कोई न कोई परिवार में रहती थी। तो जब एक परिवार में मैं थी तो क्या है कि परिवार में वो भाई था वो ज्ञान में पक्का रहा, पर बहन थी वो थोड़ी ज्ञान में नहीं आई, उसकी पत्नी, तो इसलिए मुझे थोड़ा फील होता था कि मैं अकेली यहाँ ऐसे आई हूँ। तो मैंने दादी को पत्र लिखा तो दादी ने जवाब में लिखा, तुम तो शेरनी हो, अकेली घूमती हो, हाथी है वो झुंड में घूमता है। तो ऐसे दादी जी है वो प्रेरणा देती गई, जिससे सेवा में मुझे भी उमंग उल्लास रहा।
दीदी जी,
अभी पांच मिनट
है दी, मैं देख लिया दीदी दीदी एकदम एक्यूरेट होती है। दीदी जी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये पूरा ईस्ट एरिया संभालती थी, और हमारे मनोहर दादी जी उन्होंने शरीर छोड़ा, उसके बाद दीदी जी को यहां बुलाएगा, बड़ों ने डिसीजन लिया। तो दीदी इतना बड़ा जोन सब कुछ छोड़ के, जैसे बड़ों ने बोला आप तुरंत तैयार हो गए, आपके मन में कोई ऐसा संकल्प नहीं चलता है? क्योंकि हमारे छोटे छोटे सेंटर भी इधर उधर करते हैं तो लोग संकल्प चलते हैं, तो आपके उस समय क्या स्थिति थी?
मैं शुरू से नष्ट मोह थे। जब निर्मल शांता दादी बंबई से गई और प्रकाश बनी दादी बंबई आई तो सबको लगा कि निर्मल शांता दादी ने इसकी इतनी पालना की है तो निर्मला को दुख होगा, पर मुझे तो कुछ नहीं, एक दादी गई दूसरी दादी आ गई। तब बाबा ने मुझे नष्ट मोह का टाइटल दिया। फिर मैं बंबई से 71 में पहली बारी विदेश गए और फिर विदेश आना जाना चलता रहा। उस समय बंबई में सिर्फ मैंने 5 वर्ष सेवा की थी और मैं जब विदेश फिर से जा रही थी, वो माताएं कई कई रो रही थी कि हम गैया को छोड़कर आप कैसे जा रही हो। पर मैंने कहा नहीं, दादी ने कहा जाओ फिर से लंदन, मैं चली गई। तो 5 साल हुआ था, अभी ऑस्ट्रेलिया में तो 30 साल हो गए। और 30 साल में ऑस्ट्रेलिया एशिया के सब भाई बहने बिल्कुल तैयार हो गए थे। इसलिए दादी जानकी ने पहले चार्ली को पूछा कि हम बुलाना चाहते हैं, बुलावें? चार्ली ने कहा भले जावे,
वो भी नष्ट हुआ।
और हमने भी कहा अभी ये लोग तो सब तैयार है, मुझे क्यों वहां बैठे रहना। तो इसलिए जरा भी संकल्प नहीं चला।
मुझे याद है कि जब हम दीदी के पास गए थे, दीदी को एक टाइटल मिला नया, दीदी अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका, तो हम गुलदस्ता लेके गए तो दीदी ने लिया और रख दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मतलब ये ताकि भाई कोई भी परिस्थिति में दीदी एकदम उसी स्थिति में दोमर स्थिति में रहती। ये अब कई बार हमें कारोबार के समय भी जाना पड़ता है। दीदी, लास्ट का सामने वालों से क्वेश्चन है कि अमृत वाला पावरफुल कैसे करें, उसके बाद हम क्लोज करेंगे।
मेन बात है, जबकि हमें मालूम है कि ये टाइम है सबसे अच्छा कमाई करने का, इसलिए अपना दृढ़ संकल्प हो कि मुझे कमाई करनी ही है, तो सोते समय भी बाबा को प्रॉमिस करके सोना है कि हाँ हम सवेरे उठकर बाबा आपको मिलेंगे। जैसे मम्मा ने, मम्मा की बात है, मम्मा बंबई में थी, रमेश भाई के घर रहती थी, तो एक मिनिस्टर मिलने आया और वो मिनिस्टर 12 बजे गया और मम्मा उस अपने नियम अनुसार 3:30 बजे उठ गई। तो मम्मा को रमेश भाई ने कहा कि आप इतना देरी से सोई और इतना जल्दी उठ गई। तो मम्मा ने कहा ये तो मेरा पीयू से मिलने का टाइम है, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। तो जब ये निश्चय हो कि ये हमारा प्रियतम से मिलने का टाइम है, हमको मिस नहीं करना है, तो क्या है, निश्चय होने से और बाबा से प्यार होने से और अपना समय सफल करना है, तो नेचुरली है उस समय उठकर फ्रेश होना है पहले। यदि नींद का नशा आता है ना तो क्या करो, चाय पी के या स्नान करके फिर आओ, तो इससे क्या होगा कि नींद का नशा उठ जाएगा। और लक्ष्य रखना है कि हमें आज बाबा से ये शक्ति लेनी है, ये अनुभव करना है, ये संबंध का अनुभव करना है। तो क्या है कि लक्ष्य रखने से लक्षण आ जाएंगे।
बहुत धन्यवाद दीदी जी। और सभी लोग एक मिनट खड़ा होकर दीदी के सम्मान में तालियां भी बजाओ, सम्मान भी करो कि दीदी जी ने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, इतनी उम्र होने के बाद भी इतनी अच्छी पालना दे रही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ऐसे ही आपकी पालना हम सबको मिलती रहे, हम ज्ञान सरोवर को मिलती रहे, भट्टी वालों को मिलती रहे। आप सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहिए, यही सबके तरफ से शुभकामनाएं दुआएं।